अगली टिप, तंग दस्ती पे गम ना करें क्योंकि किल्लते माल में सलामती है। जी, हम कहते ज्यादा माल होगा तो बहुत रिलैक्स्ड हैं, बच्चों के खर्चे पूरे, खुशियां पूरी, गाड़ियों के बिल और दिस एंड दैट, छोटा घर नहीं बड़ा घर होगा तो मजे, ये सारे मजे निकल जाते हैं। कब? जब हम इन सारी चीजों को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर पता चलता है। जिस्म मोटा होगा तो कल्ब में पेचीदगी होगी, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, दिल काम सही नहीं करेगा। कम माल हो तो सलामती रहती है। अच्छी लगी आपको ये मिसाल? यानी अमूमन मोटे लोग ज्यादा बीमार होते हैं ना, दुबले पतले को हार्ट अटैक होगा, बच जाएगा, अल्लाह उनको भी बचाए और मोटों को भी बचाए, लेकिन एक आम बात है देखने में आती है। तो इसी तरह कम माल को दुबला पतला इंसान समझिए और ज्यादा माल को मोटा लगे, बल्कि इसको एक बना के ना एक्टिविटी अपनी आंखों में रख लें कहीं, जहाँ आपकी नजर पड़ती रहे, जब आपका दिल चाहे नेकी के मौके छोड़कर माल के मौके पाने के लिए, कुरान छोड़कर आप जॉब पे जाएं, माल तो शायद मिल जाए, वो वैसे भी मिल जाना था बाय दी वे, लेकिन इल्म नहीं मिलना था वहां जाकर। आप नेकी का मौका छोड़कर जॉब पे जाएं, ठीक है, नेकी वहां भी मिल जाएगी आपको, हो सकते वहां आप और अच्छी नेकियां भी कर, पर ये नहीं मिलेगी। तो इंसान को खुद से सिंसियर होना चाहिए, बी फेयर विद योर सेल्फ। जुमे की नमाज छोड़कर कस्टमर तो मिल जाएंगे, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होगी भाइयों के माल में। तो दुनिया से जोहद एक ऐसी राहत है जो अल्लाह अपने बंदों को दुनिया में ही इनायत कर देता है। लिखिए जुमला, मैं इसको एक जेम की शक्ल में देना चाहती हूँ। दुनिया से जोहद, जोहद होता है बेरगबती, केयरलेस, और कुछ लोगों को ना पहनने का शौक, ना खाने का शौक, ना कोई बहुत सलीके के साथ दुनिया को सजा कर डिस्प्ले का शौक, बस पैसे का शौक होता है। तो दुनिया से जोहद एक ऐसी जन्नत है जो अल्लाह अपने बंदों को दुनिया में अनायत कर देता है। ये लफ्ज़ जन्नत मैंने अपनी तरफ से बोला है, वल्लाही उस बंदे की दुनिया जन्नत है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और वो कहता है कि मुझे क्या और चाहिए, और जिनकी जेबें भरी पड़ी हैं नोटों से, वो कहते हैं चोरी ना हो जाए और कम ना हो जाए। तो दुनिया की जन्नत है जोहद, हम जमीन और इसकी अशिया के वारिस हैं, ये तो अल्लाह कहते हैं ना, नाहनुल वारिसीन। एक शायर कहता है, पानी रोटी और साया, बस यही तो नेमते हैं, तीन चीजें बस, पानी रोटी साया, कोई चटनी नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई रोटी नहीं है, और सब कुछ लेकर भी लोग कहते हैं पका के खाएं क्या, किसके साथ खाएं, कल की रोटी, कल का सालन, अल्लाह अकबर कबीरा। इनके बावजूद अगर मैं ये कहूं कि मैं गरीब और तंग दस्त हूं, तो मैं अपने रब की नेमतों का ना शुक्रा हूं। दुनिया क्या है, ठंडा पानी, गरम रोटी और घना साया। क्या लताफत है इस शेर में। एक दूसरे शायर ने कहा, एक जगह का नाम है, सरांदीप के आसमान से मोती बरसे, तकरूर के कुओं में चांदी भर जाए, मैं अगर जिंदा रहूं तो रोटी मिलेगी, मर जाऊं तो कब्र। यानी ना मुझे मोती साथ मिलेंगे ना चांदी के खजाने, मैं तो कब्र में जाऊंगा तो मट्टी मिलेगी, और जिंदा रहूंगा तो रोटी। मेरा हौसला बादशाहों का सा है, मेरा नफ्स आजाद है जो जिल्लत को कुफर समझता है, यानी जलील होकर जियो, इससे बेहतर है कि मैं ना जियो। जब मैं उम्र भर अपनी रोजी पर राजी हूं, तो मैं जैद और उमर के पास क्यों जाऊं। जी, यानी जैद उमर किरदार होते हैं, अरब लोग हमेशा इन नामों को रखते हैं जस्ट सिम्बॉलिकली। मुराद ये है कि जो मुझे मिल रहा है मैं उस पर राजी हूं, तो मैं गैरों से जाकर फिर मदद क्यों मांगू। ये इन लोगों की इज्जत की मिसाल है जो अपने तसव्वुरात, अपने मिशन और पैगाम में संजीदा, सच्चे और भरोसा रखते हैं। अब देखिए, मुस्तकिल जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, पीछे बात एक ही है, दुनिया कमाने की खातिर अपनी जिंदगी को बड़े मकासद से दूर ना करें। शायद आप में से किसी को ये लग रहा हो कि फिर नहीं कमाना, घर बैठ जाए, मर सब जॉब्स छोड़कर बैठे, कारोबार बंद, दुकानें बंद, तो कोरोना ने तो ये भी तजुर्बा करवा दिया लॉकडाउन की सूरत में अल्लाह के हुक्म से। मुराद ये नहीं है, दो तरह के जीने, लिखे ये मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ, दो तरह का जीना है, एक है फराइज की सतह पे और एक है अजीमत की सतह पे। हमारी हर इबादत भी इसी में, कुछ फर्ज हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग हैं जो लोगों के लिए जीते हैं। एक को ये फिक्र है कि मैंने नमाज पढ़ी कि नहीं, दूसरे को ये फिक्र है कि दूसरों ने भी नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक को ये गम है कि मेरा बच्चा नेक हो रहा है कि नहीं, दूसरों को ये गम है कि दूसरों के बच्चे नेक हो रहे हैं कि नहीं। इस तड़प के बगैर आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए। आप कहते हैं मेरे बच्चे पढ़ जाए बड़ा, और आपके बच्चे नहीं पढ़ते, अब दूसरों के बच्चों को पढ़ाइए, आपके खुद ही पढ़ने लग जाएंगे, ये भी एक मिसल है। तो याद रखिएगा, आप अगर फ़राइज़ की सतह पे जीती हैं ना, और जीते हैं ख़ास तौर पे चूंकि मनी मैटर है, तो आपको इनसे क्या लेना है? आप सुनने वालों में तो किसी का भी ताल्लुक नहीं, ये तो मर्दों का इशू है, लेकिन उनको भी तो हम ही बताएंगे। तो याद रखिए कि अगर आप फ़राइज़ पे जिए तो जो मर्जी करें, बस आपकी फ़िक्र इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलु सालेहात, खूब मुजाहदे करें, मुजाकरे करें, अपने आप को मांजें, रगड़े खुरचें, वजीफे कर लें, दुआएं पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन फिर असहाबुल जमीन है बस, मीडियोकर्स। लेकिन अगर आप अजीमत के सतह पे जिए, कोई बड़े काम की नियत की है, दुआ की है, इरादे किए हैं, तो फिर अजम के साथ जीना पड़ेगा। और जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी मुश्किलें हैं सिवा, तो क्या सीखा कि तंग दस्ती पे गम नहीं करना, क्योंकि किल्लते माल में सलामती है। क्या फ़ायदे हैं तंग दस्ती के? जिसम मोटा नहीं होगा, कल पेचीदा नहीं होगा, माल की कमी है ना, ये भी एक नेमत है, क्योंकि ईमान और दिल सलामत होगा कि जितना बंदा दुनिया में घुपता है ना, उतना गीला होता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं घर में रहूं या घर से बाहर जाऊं, मेरे से कोई गुनाह नहीं होता। मैं भी निकल के बाहर जाऊंगी ना, मुझसे भी गुनाह होंगे, मैं आपको सच बताऊं, मेरा वक्त भी ज़ाया हो जाएगा, कई चीज़ों में मुझसे बेपर्दगी हो जाएगी, मेरी कई जगह इंट्रेक्शन हो जाएगा। तो बेहतर नहीं कि मैं अपने आप को फितनों से बचा के रखूं? सवाल पैदा होता है जोहद क्या है, जिसका जिक्र अभी आया तो नोट कीजिएगा। जोहद का लफ्जी माना होता है रुक जा, जाहिदुन, एक होता है जहब, जाना चलना, और उसका ऑपोजिट कह लीजिए जोहद है। हजरत सुफियान बिन उयना फरमाते हैं लफ्ज जोहद में सिर्फ तीन हर्फ हैं, जा हा दाल, ऐसी है ना। तो जा का मानी है जीनते दुनिया को तरक करना, हा से है हवा, ख्वाहिश लस्ट, हवाए नफ्स यानी अपने दिल की ख्वाहिशात को छोड़ना, और दाल से मुराद है दुनिया, तमाम दुनिया को तरक करना। बस जब तो इन चीज़ों से मुंह मोड़े, इस वक्त जाहिद कहलाने का हकदार होगा। तो बस जाहिद कौन है जो इन तीन चीज़ों से मुंह मोड़े, और जोहद यह है कि शरीयत जिस चीज़ की इजाज़त दे इसे इख्तियार करे, और बाकी सब कुछ छोड़ दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप बताइए, दुनिया से जोहद मतलूब है कि नहीं? क्या तरीके हैं? आप देखिए कि राहत हर एक चाहता है, ये बहुत बड़ी राहत है कि आपके दिल में दुनिया ना हो। हाथों में रखिए दुनिया, दिल में ना रखिए। कुछ को कमाने और संभालने का शौक होता है, अपने पीछे वालों के लिए जायदादें छोड़ने का शौक होता है, और ज़िंदगी में शायद घर में खर्चा भी पूरा ना दें। माल से जो दुआएं ले सकते थे, वो हम बाज़ दफ़ा बददुआएं ले लेते हैं अपने रिश्तेदारों की। इसी तरह से याद रखिए, अल्लाह की इनायत है, दुनिया से बेरग़बती अल्लाह के क़ुर्ब को पाने का ज़रिया है, और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसे अल्लाह मुसलमानों के कामों में से किसी काम का ज़िम्मेदार बनाए, फिर वो इनकी ज़रूरियात और इनकी मोहताजी और तंग दस्ती के दरमियान रुकावट बन जाए, तो अल्लाह ताला इसकी ज़रूरियात और इसकी मोहताजी और तंग दस्ती के दरमियान हायल हो जाता है। अबू दाऊद की रिवायत है 2948। शायद लिखने और लिखाने वालों को भी ना ये बात समझ आए, अगर ये बात यहाँ ना आती जो मौजू चल रहा है। तो बाद में गौर कीजिएगा इस हदीस पे, क्या जी रहे हैं और किधर जा रहे हैं। और वे एक ही जुमला कह देती हूँ, जीने वालों को जाने की फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ने आपको मुझे दूसरों के लिए चुना, और हम अपनी जाती गमों दुखों में जी के चले गए, तो जवाबदेही तो वहाँ है, अल्लाह ताला हमें फिक्र लगा दे। अगली टिप है जी, जो अभी वकूअ पज़ीर नहीं हुआ, इससे ना डरिए, यानी मुस्तकबिल के अंदेशों में मत होलिए। बहुत सारे लोग आखरत के लिए गमज़दा होते होते ज़ाहिर की मौजूद ज़िंदगी की जो नेमतें हैं ना, इसको भी इंजॉय नहीं करते, बच्चों के बचपन को इंजॉय नहीं करते, और उनके मुस्तकबिल के गम दिल में पाले रखते हैं। तौरात में लिखा है कि जिससे ज़्यादा डरा जाता है वो होता नहीं जी, और इसके आगे भी डिटेल है। फिरौन को बड़ा डर था कि बनी इसराइल के घरों में पैदा होने वाला बच्चा मेरे तख्त कोई ना उलट दे, अल्लाह ने वही कर दिया, बल्कि फिरौन के घर में मूसा को पलवा दिया। अल्लाह तो वो है, वो फिरौन से डरता तो नहीं है। तो जिससे डरा जाता है ना, वो अक्सर होता नहीं है। आप खुद भी इस असूल को जिंदगी में ले लें, आप कहेंगे अस्तग़फिरुल्लाह, तौरात का नाम आपने ले दिया, तो क्या हुआ? तौरात भी अल्लाह की किताब थी, सूरत मायदा तो खोलिए, तौरात के लिए कितनी खूबसूरत लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तौरात की कितनी आयतें हैं सूरत मायदा में, जो आजकल हम सुबह में आयत बायत में पढ़ रहे हैं। अगर किसी को असल तौरात चाहिए तो वो सूरत मायदा में उसका बेशतर हिस्सा है। मतलब ये है कि जिन चीज़ों से लोग ज़्यादा डरते हैं वो कम ही वाकई होती हैं, जहनी वहम ज़्यादा होते हैं, जो हकीकत का रूप कम ही धारते हैं। एक शायर के शेर का मफहूम है, मैंने अपने दिल से कहा कि अगर कोई फिक्र तुझे लाहक हो तो खुशी मना, क्योंकि अक्सर डरावनी चीज़ें हुआ नहीं करती, यानी कर लो जितना मर्जी फिक्र करना है, होना तो ये कुछ भी नहीं। यानी कोई हादसा मालूम हो, किसी मुसीबत के बारे में सुने, तो इस बारे में तामुल करें, गौर करें, सुनते ही घबरा न जाएं। अक्सर खबरें और उम्मीदें गलत होती हैं। जाहिर है कि तकदीर बनाने वाला इस दुनिया में कहीं नजर आए तो इसे ढूंढा भी जाए, जब नजरों से निहां है कौन, अल्लाह ताला छुपा हुआ है ना, तो फिर क्या हो? अल्लाह ने फरमाया, कहिए मैं अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ। अल्लाह अपने बंदों को खूब देखता है। अल्लाह ने इन्हें दुश्मनों के मकर और कैद से बचा लिया। मर्दे मोमिन के जुमले हैं, सूरत मोमिन में जाकर आप खुद नोट कीजिए। तो क्या पता चला, जो भी हुआ नहीं उसका गम ना कीजिए, आज को इंजॉय कीजिए, कल को छोड़िए। जैसे एक लड़की कह लीजिए यंगस्टर्स में थी, तो मुझे याद है कि वो अक्सर परेशान रहती थी। क्या हुआ, पता नहीं किसके पास जाकर अपना ईमान बेच आई, हाथ दिखा दिया, और वो जो खरीदने वाले थे जो उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारे शौहर की बड़ी जल्दी डेथ हो जाएगी, अभी ना मंगनी ना शादी ना शौहर ना बच्चे। और इसीलिए तो कहा कि जिसने किसी को हाथ दिखाया उसने तो अल्लाह के नबी के दीन को ना माना, कई दिन इबादत कबूल नहीं, और अगर सच मान लिया तो उसने तो अल्लाह के नबी के दिए हुए दीन का इनकार किया। खैर, अब वो हर वक्त परेशान रहती थी, शादी की उम्र थी, रिश्ते आ रहे थे, खौफजदा थी। कहती मेरे शौहर ने बहुत जल्दी मर जाना है, मुझे किसी ने कहा तुम्हारे साथ शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा होगा। यकीन कीजिए मैं अपने गुमान से कह सकती हूँ कि इस वक्त वो सिस्टर 50 से 60 के इन बिटवीन है। अल्हम्दुलिल्लाह शौहर भी जिंदा है, बच्चे भी हैं, शादियाँ भी हो रही हैं, आप क्यों फिक्र करते हैं? और एक वक्त था कि वो इतनी साइकिक हो चुकी थी, कहती थी नहीं या तो मुझे तलाक हो जानी है या मेरे शौहर को कुछ होगा। तो याद रखिए, जो भी हुआ नहीं उसका डर ना कीजिए, हर वक्त हौलते रहें, होगा देखी जाएगी, अल्लाह बचा के रखे। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये सब सीख चुके हैं आप रमज़ान से पहले के वो सारे सेशंस जो लॉकडाउन के दिनों में हमने किए, उसमें एक एक दुआ पढ़ी, पूरी पूरी बुक्स पढ़ ली हमने। तो अपनी पूरी कोशिश कीजिए, बाकी बातें अल्लाह पे डाल दीजिए। तो क्या सीखा, खौफ और अनहोनी का डर बंदे के मौजूदा ज़िंदगी के दिनों को परेशान कुन दिन बना देता है। इस तरह ज़हनी वहम और ख्याल आते हैं तो उससे बंदा परेशान रहता है, और अक्सर खबरें और उम्मीदें झूठी होती हैं। हम क्या करें? नंबर एक, कोई हादसा पेश आए तो इसके बारे में तामुल करें। तामुल क्या होता है? रिलैक्स्ड, गौर करें, सुनते ही घबरा मत जाएं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें, रिलैक्स्ड। और सबसे बड़ी बात है तवक्कुल अल्लाह, क्योंकि व मैं यह तवक्कल अल्लाह ही फहुवा हस्बु, सूरह तल्लाक़ की आयत नंबर 3 है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है बस वो उसको काफ़ी है। तो अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा कीजिए, एतमाद कीजिए, अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, हफाजती तदाबीर इख्तियार करके अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, और बेकार बैठकर अल्लाह को काफ़ी जानना तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुबहान ताला। इसी तरह अल्लाह ताला पे नज़रें लगा दीजिए बस। और हदीस सुन लीजिए, इमरान से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 लोग, यानी आदमी मुराद लोग, बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। लोगों ने पूछा, वो कौन लोग होंगे अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, वो लोग जो दाग नहीं देते और मंतर नहीं करते और अपने परवरदिगार पर तवक्कुल करते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत 524। ये जो तीन चीज़ें ना, दाग देना, मंतर करना और अगली चीज़, ये उस दौर के जाहिलियत के तरीके थे, दाग लगवाते थे और जंतर मंतर, जैसे आज के दौर में आप अपनी ज़ुबान में के दम दारू करना और जाकर तवीज़ लेना और गलों में पहनना, उसकी तरफ इशारा है। तो अल्लाह पे नजरें लगाइए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगली टिप लेते हैं, अहले बातिल और हासिदीन की तनकीद से गमगीन मत हों। क्यों? इसलिए कि उनका तो काम ही है, और वो ये तनकीद ना करें तो आप अपने आप को सुधारेंगे भी कैसे? तो हिजब इकतदार हो या हिजब इख्तलाफ हो, अगर कोई उसके ऊपर तनकीद बराए तनकीद करे तो दुखी ना हो। अपनी क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर करते जाएं, दूसरे आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे। हासिदीन अगर तनकीद करते और बुरा भला कहते हैं और आप इस पर सब्र करते हैं तो आपको इसका अजर और सवाब मिलेगा। अगर वो तनकीद करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको वजन दे रहे हैं, क्योंकि मुर्दा कुत्ते को कोई नहीं भगाता, हकीर लोगों से कोई हसद नहीं करता। एक शायर कहता है, ऊंची नाक वालों से हसद किया जाता है, कमजोर और जलीलों से कोई हसद नहीं करता। एक और शायर कहता है, जो लोग शरीफ आदमी किसी जिद्दोजहद नहीं करते, ना इसका मर्तबा हासिल कर पाते हैं, वो इससे हसद करने लगते हैं। जी, यानी करके दिखाएं, वो तो ये भी नहीं कर सकते, ये मुराद है। जैसे किसी हसीनो जमील औरत की सौकने, सौकने कौन होती हैं पता? जिनके 100 कान होते हैं, हर कान आपकी बुराई सुनने के लिए तैयार होता है। चलिए, आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, सौकन लफ्ज का आपने नोट भी किया होगा और सुनाएंगी दूसरों को जाकर, और ख़ास तौर पर शौहर को। कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। तो जैसे किसी हसीनो जमील औरत की सौकने, हसद और कीने के मारे इसको बदसूरत कहें, क्योंकि वह सौकन को तो नहीं, सौकन अच्छी लगती ना। जुहैर एक शायर थे, उन्होंने अपने ममदूह यानी अपने महबूब की तारीफ में कहा, इनसे लोग हसद करते हैं क्योंकि इनको अल्लाह ने दे रखा है और लोगों के हसद से इनकी नेमतें छीनी नहीं गईं। यानी वो कहते हैं, मेरे महबूब से लोग हसद करते हैं तो करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और शायर ने कहा, वो मेरी मौत पर रश्क कर रहे हैं, अफसोस कि मेरी मौत भी रश्क से खाली नहीं। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। एक और शायर ने कहा, तुम्हें चुगलखोरों की अजियत की शिकायत है, जो भी बड़ा आदमी है उसके हासिद भी बहुत हैं, हसद बड़े और सरदार लोगों से ही तो किया जाता है, मिसकीनों हकीर से भला कौन हसद करता है। बात तो सच है ना। आप देखिए ना, लोग कहते हैं, जैसे एक खवातीन थी बेतकल्फी में बैठी हुई, एक कहेंगी मेरे हस्बैंड को नजर लग गई है, तो दूसरी दोस्त ने कहा लगी कहाँ है, था क्या उनके पास नजर लगने वाला? तो ये तो खैर एक बेतकल्फी है ना, एक दोस्त की दूसरी से। लेकिन आपको पॉजिटिव बनना है, अगर मेरे में कोई खूबी ना हो तो मेरे बारे में कोई सोचे भी क्यों। एक शायर ने कहा, जब आदमी अपनी बुजुर्गी में हम दोषे सुरैया हो जाए, यानी बहुत ही तरक्की पे पहुंच जाए, उसका नाम हो जाए, कामयाब लोगों में उसका जिक्र होने लगे, तो इसके हासिदीन भी इतने हो जाते हैं जितने सितारे, और इसके हर कारनामे पर हर तरफ से तानों के तीर से चलने लगते हैं, लेकिन वो अपनी इन हरकतों से इसका मुकाम नहीं पा सकते। जी, ये बात सच है। और आप देखिए कि आप जितना भी ऊपर जाएंगे ना, आपके करीब वाले, खास तौर पे जिन्होंने आपका बचपन देखा हो, वो उतने ही ज़्यादा हसद करेंगे। इवन सगे भाई बहन आपकी वो कदर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनको पता है बचपन में आपका नाक बहता था। तो जो करीबी लोग होते हैं, और ख़ास तौर पर ख़ानदान, फैमिली, फ्रेंड्स, वो आपकी इसीलिए ज़्यादा कदर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप कदम कदम चल के कहाँ पहुँच गए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अंदर हसद भी होता है, क्योंकि कुल्लू ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद तो किया जाता है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से गुजारिश की कि लोगों की ज़ुबानें इनसे रोक दें, यानी लोग मेरे बारे में कुछ ना कहें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, ये कायदा तो मैंने अपने लिए भी नहीं रखा। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत जुमला। मैं इन्हें पैदा करता हूँ, रोजी देता हूँ, फिर भी मुझे बुरा भला कहते हैं, यानी मैं सब कुछ देता हूँ और लोग मुझे ही बुरा कहते हैं। और आप देख लीजिए, बातें करते हैं तो अल्लाह को भी बातें करते हैं, हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ज़माने को बुरा कहते हैं, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूँ, गर्दिशे लैलो नहार मैं ही अंजाम देता हूँ, मुझे सबो शितम यानी गालियाँ देना यूं करते हैं कि मेरी ज़ात से बीवी बच्चे मंसूब करते हैं, हालांकि मेरे बीवी बच्चे नहीं। लोग तो पता नहीं क्या क्या फैमिलीज बना चुके अल्लाह के नाम पे, नाउज़ुबिल्लाह। आप लोगों की ज़ुबानों को अपनी आबरू रेजी यानी अपनी बेइज्जती करने से रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी बदकलामी और तनकीद से यूं बच सकते हैं कि आप खैर के काम कसरत से करें। जी, शायर कहता है, मैं किसी बेवकूफ़ के पास से गुजरता हूँ जो मुझे गालियाँ देता है, तो मैं वहाँ से ऐसे गुजर जाता हूँ जैसे वो मुझे नहीं किसी और को कह रहा है। एक और शायर ने यूं कहा, जब कोई बेवकूफ़ कुछ कहे तो इसे जवाब ना दो, किसे जवाब देने से खामोश रह जाना बेहतर है। शरीफों, अबकरियों और बुलंद मर्तबा लोगों को हकीर, बेकार और थर्ड क्लास लोग अपने लिए चैलेंज समझ लेते हैं। मेरे मोहसिन और खूबियाँ ही इनके नज़दीक मेरे गुनाह हैं, तो बताओ मैं क्या माजरत करूँ। मालदार बिलमोम इस्तराब की ज़िंदगी गुजारते हैं, जब इनके शेयर्स की कीमतें गिरती हैं तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बर्बादी है खराब जू और गीबत करने वाले के लिए जो माल जमा करता है, जमा माल वा ददा, और गिनकर रखता है और समझता है कि इसका माल इसे हमेशगी दे देगा, हरगिज़ नहीं, वो तोड़ फोड़ देने वाली दोजख में डाल दिया जाएगा। एक मगरबी यानी वेस्टर्न राइटर है, मुसन्निफ कहता है, जो सही हो इसे कर गुजरो, फिर हर गलत तनकीद से पीठ फेर लो। बुजुर्गों के अकवाल और तजुर्बात में से ये है, किसी जारहाना बात, किसी जारहाना कौल, और हजविया यानी जिसमें दूसरों का मजाक उड़ाया जाए, किसी हजविया कसीदे का जवाब ना दो। इसको बर्दाश्त करना माइब को दफन करना है, ऐब को यानी जो ऐब होते हैं ना उनको दफन करने के बराबर है। बुर्दबारी में इज्जत है, खामोशी से दुश्मनों की जुबानें बंद हो जाएंगी। दरगुजर में सवाब मिलता है, बड़ाई हासिल होती है। आधे लोग जो आप पर किए गए सबो शितम यानी गालियाँ, इनको पढ़ेंगे नहीं भूल जाएंगे, यानी अगर अल्लाह ना करे आपके खिलाफ कोई कुछ लिख ही देता है, किसी जगह अखबार में छपी जाता है, कितने को दिन रहेंगे और वो अखबार कितने लोग पढ़ते हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि जो पढ़ेंगे उनको कितने को दिन याद रहेगा। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग, इसके साथ इंसान के अंदर तब्दीली आती है और गम दूर होते हैं। और आधे लोगों को तो ये अंदाज़ा भी नहीं हो सकेगा कि क्या बात है, क्या सबब है। और एक जुमला और नोट कर लें कि आपके नाम के और बड़े लोग होंगे, उनको तो ये तक नहीं पता होगा कि ये आपकी बातें हो रही हैं। इसलिए इसका जवाब देकर लोगों में इस बात को रासिख ना करो, यानी माजरत करके ये ना बता दो कि ये मेरी ही बात हो रही थी। कितनी सोने के पानी से लिखने ली बातें हैं, हमारे बड़ों की बातें ऐसी ही होती थी। आज तो न जाने ना हमें ऐसी बातें करनी याद रही और ना हमारी नस्लों को सुननी याद रही। एक हकीम का कौल है कि लोगों को अपनी रोटी की पड़ी है, इन्हें हमारी तुम्हारी भूख प्यास की क्या परवाह, हमारे मरने जीने की क्या खबर। यानी जो बातें करते हैं उन्होंने कभी पलट के आपका हाल पूछा। एक शायर ने कहा, साथ रहने वालों से अपने रंजो गम को छुपाओ, ये हम नशीन तो हासित हैं। वो जगह जहाँ सुकून के साथ जौ की रोटी मिले, इस जगह से बेहतर है जिसमें तरह तरह के खाने हों, लेकिन तकलीफ दे बातों, शोरों शगब और हंगामों की अमाजगा हो। तो बात तो सच है, आप तन्हाई कबूल कर लेंगे, लेकिन ऐसे बातिल और हासिदीन की तनकीद भरी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या सीखा इस टॉपिक में? अमूमन तनकीद क्यों की जाती है, लोग आप पे तनकीद क्यों करते हैं, क्रिटिसिज्म। नंबर एक, हसद। फिर इल्म और सलाहियतों में पीछे रह जाना, यानी उनके पास वो इल्म और सलाहियत ही नहीं जो आप में आ गई। फिर इस तरह मालो दौलत की कमी होती है और वो चाहते क्या कि आपकी तरक्की में रुकावट डले। करें क्या तनकीद से ना घबराएं, क्योंकि शायर तो कह गए, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी, मुखालफतों की हवा में परिंदे और ऊंचे चले जाते हैं। आपको मुझे भी यही करना है, इग्नोर ग्रेसफुली। तो सवाल ये कि फिर बेजा तनकीद का सामना कैसे करें? एक जुमला बोल दो, सेल्फ सेंटर्ड होना छोड़ दें। जी, इसलिए कि जो लोग कहते हैं आई एम वेरी सेंसिटिव, आई एम टू सेंसिटिव, तो घर बैठिए, सेंसिटिव लोग दीन का काम नहीं कर सकते। जरा सी बात चुभेगी एकदम चीजें फेंक के पांव पटकते हुए निकल जाएंगे। लो जी, काम भी करो तो बातें भी सुनो, और ये तनकीद सुनने का हौसला कुरान देता है। फिर इस तरह सब्र और बर्दाश्त से काम लीजिए, दरगुजर कीजिए। खामोशी बहुत प्यारा जवाब है, और जारहाना बात का जवाब ना दें, यानी जब कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहता है ना कि मैं प्लेट फेंकू ताकि ये गिलास फेंके, तो आप उस बात का जवाब ही ना दें। यानी ऐसी बॉल है जिसको खुद ही खेल लो, विकेट से हट जाइए। और कुरान में सूरह बकरा 109 में अल्लाह ने अहले किताब की बातों में से एक बात कह दी, महज हसद और बुग़ज़ की बिना पर वो आपको भी ईमान से हटाना चाहते हैं। तो आप भी माफ़ करें, छोड़ दें, अल्लाह खुद ने बट लेगा इनको। इसी तरह से आप देखिए कुरान पाक में बारहा अल्लाह के नबी को कहा गया कि ये मुशरिक और मुनकिर आप पे जो तनकीद करते हैं بے سر و پا قسم کے مطالبات کرتے ہیں، آپ اعراض برتی ہے، اور جب یہ بہت ہی آپ پہ غضب ناک اور غصے میں ہو تو کہہ دیجئے قل موتو بغیظکم، آپ فرما دے مر جاؤ اپنی گھٹن میں، آل عمران 119 ہے یہ. تو پھر کیا سیکھا؟ عمل کی باتیں، تنقید کا مقابلہ اپنی صلاحیتوں کو اور بہتر کر کے کریں، یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ میں اپنے آپ کو اور اچھا کروں گی، یہ نہیں کہ میں جو کر رہی ہوں وہ بھی چھوڑ دوں گی. اسی طرح اپنی خامیوں کو پہچانیں اور دور کرنے کی کوشش کریں. انالیسس بھی تو کیجیے نا کہ واقعی اگلا سچ بھی تو کہہ سکتا ہے، ہر بندہ حاسد نہیں ہوتا، بہت مخلص لوگ بھی آپ کی کمیوں پہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نکھارنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ساری دنیا کو خوش نہیں کر سکتے. جو کچھ ابھی تک پڑھا ذرا سا اس کو جذب کیجیے ایک وقفے کی صورت میں، کیونکہ تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. غم نہ کریں، مرض زائل ہو جائے گا، مصیبت ختم ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض ادا ہو جائے گا، قیدی چھوٹ جائے گا، غائب آ جائے گا، گناہ گار توبہ کر لے گا، محتاج مالدار ہو جائے گا. اور اکثر ماں کو بڑا غم ہوتا ہے بچوں کے مال کا، ہائے میرا فلاں بیٹا، ہائے میرا پتر، اللہ اس کا کاروبار بڑھا دے. ایک ہی دعا ہوتی ہے اکثر ماں کے منہ پہ، اللہ ان کو مال دے دے، وہ مال دے جس کے اندر عزت بھی، پیار بھی اور صحت بھی ہو. اسی طرح یاد رکھیے کہ غم نہ کریں، کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان سے کالے بادل چھٹ جائیں گے، تاریک رات روشن ہو جائے گی، تند و تیز ہوا رک جائے گی، آندھی و طوفان میں سکون آ جائے گا، تب آپ کے مصائب ختم ہونے والے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، مستقبل روشن ہوگا. غم نہ کریں کہ سورج کے شعلے کو گھنا سایہ، یعنی ہلکا سا سایہ تخفیف کر دیتا ہے، یعنی اتنے بڑے سورج کے سامنے ذرا سا بادل آ جائے تو سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے. دوپہر کی شدید گرمی میں صاف اور ٹھنڈا پانی آرام دیتا ہے، بھوک کی شدت کو گرم روٹی دور کر دیتی ہے، شب بیداری سے ہونے والی شدید تھکن کو میٹھی نیند دور کر دیتی ہے. کتنے تھکے ہوئے سوتے ہیں رات کو، صبح فریش نہیں اٹھتے، شرط ہے کہ جلدی اٹھیں، دیر سے اٹھیں گے تو کبھی فریش نہیں ہوں گے. مرض کی اذیتوں کو عافیت کی لذت ختم کر دیتی ہے، اس لیے تھوڑا سا صبر کیجیے، تھوڑا سا انتظار چاہیے. گھبرائیں نہیں کہ قضاء و قدر کے سامنے اور تقدیر کے لکھے کے آگے تمام ڈاکٹر، حکیم، سائنسدان اور شعرا حیران ہیں اور ساری تدبیریں ناکام ہیں. آپ دیکھیے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں نبضیں ہوتی ہیں اور مریض دم توڑ دیتا ہے، اور کبھی کئی دن کے ملبے کے اندر دبے ہوئے کو اللہ زندگی نہیں دیتا. اسی بات کو علی بن جبلہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب آرام ملے کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں. اس لیے کسی بھی حال میں ہو، کیسا ہی شدید فکر لاحق ہو، آپ مایوس نہ ہو، کہ جب آدمی مایوس ہونے لگتا ہے اسی وقت راحت مل جاتی ہے. اور اللہ کے نبیوں کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ جب زندگی میں اتنی مشکلات آئیں کہ زلزل و زلزالن شدیدہ، تو اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کے نبی سے بھی آ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ پوچھا کرتے تھے، متى نصر اللہ، اللہ کے نبی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی. تو آپ دیکھیے کہ میری آپ کی زندگی میں تو غم ہی کوئی نہیں ہے. کہیے 10 دفعہ خود کو کہیں، میں نے تو آج تک غم دیکھا نہیں، میں نے تو ابھی تک غم چکھا نہیں، مجھے تو آج تک پریشانی آئی نہیں، اور اگر آئی بھی تھی تو وہ بے ہوشی اتنی تھی اللہ کی محبت کی کہ بے ہوش شخص کی طرح انجیکشن کا اور پیٹ کاٹنے کا پتہ ہی نہیں چلا. جتنا اللہ پہ شکر کریں گے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں گے اور بے خودی میں، بے ہوشی میں رہیں گے، اتنے اس کے غم پیچھے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا، جہاں غم بھی خوشی کی طرح حسین لگے، زندگی کو اس مقام پر لے کر آنا. کیوں روئیں آپ؟ آپ کی ماں نے آپ کو رونے کے لیے پیدا کیا؟ آپ کے باپ نے اتنے پیسے لگا کے کھلا پلا کے پڑھایا لکھا اس لیے کہ آپ ڈپریشن کے مریض ہو جائیں؟ آپ بستر پہ چلی جائیں، آپ کا ہنسنے کو دل نہ کرے، آپ سارا دن روتی رہے، ہر وقت نیگیٹو باتیں کرے؟ نہیں، اپنے آنسو پوچھئے، غم نہیں کرنا، بولیے انشاءاللہ، خود کو بولیے یہ جملے. ہر بندہ اپنے حساب سے جس کیفیت میں بھی ہے، اگر بولے میرا مرض زائل ہو جائے گا، کبھی گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے دل پہ، کہیے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ لا تکنا تو میرا رحمت اللہ. سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہی وہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کی امید نہیں ہوتی. آپ دکھی ہیں، مال نہیں ہے، خوشحالی مل جائے گی مجھے، انشاءاللہ میرا کاروبار چلے گا، میرے شوہر کو جاب مل جائے گی. یہ جملے اونچی بولیے، اتنی اونچی بولیے کہ آپ کے کان سن سکے، और कहिए मेरा मुस्तकबिल रोशन होगा। आज अगर अंधेरों में तो सूरज पे बादल आए हुए हैं, देखिएगा ये गमों के बादल हटेंगे, पीछे से चमकता हुआ सूरज मेरे सामने होगा और तारीक रात रोशन होगी, इंशाल्लाह होगी, अल्लाह का करम जरूर होगा मुझ पर। ये जुमले दिन में 10 दफा सुबह शाम रात 3 दफा की खुराक की तरह बोलिए। डॉक्टर आपको 3 टाइम की गोली लिख दे, ये खा के सो जाइएगा। और मैं आपको एक नसीहत कर दूं इस सोच के साथ कि शायद किसी पद तक बाद जाए, कभी ट्रैंक्लाइजर्स बनाइए, कभी एंटी डिप्रेसिंग दवाएं ना खाइए। डॉक्टर तो कहेंगे आप अपना इलाज कीजिए विल पावर के साथ, और इस मुकाम तक आए ना जिंदगी कि आपको अब दवाइयां खा के ही खुद को ठीक करना है। मैंने देखा अच्छे भले लोग नीम पागल हो जाते हैं दवाइयां खाकर। क्यों? दवा खाई तो ठीक है, और जब दवा छोड़ी तो उस वक्त ही पागलों वाली हरकतें करते हैं। दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं लोगों की, दवा खाए हुए और दवा छोड़े हुए। तो अल्लाह ताला हम सबको गमों से पाक करे। अगली टिप ले लेते हैं, जो अल्लाह ने आपके लिए मुकद्दर कर दिया है उस पर खुश रहिए। बोलिए मुझे यही मिलना था, मेरे माँ बाप यही थे, मेरे भाई बहन यही थे, मैंने इसी शहर में पैदा होना था, मुझे अमेरिकन पासपोर्ट नहीं मिलना था कि मैं अमेरिका में पैदा क्यों ना हुई, और मुझे यही बच्चे मिलने थे, यही शोहर था मेरे नसीब में, यही सास थी मेरे नसीब में, यही बहू थी मेरे बेटे के नसीब में। बोलिए तो सही, खुश रहिए। आप क्यों अल्लाह के फैसलों पे नाराज़ हैं? देखिए वो औलाद अच्छी लगती है जो माँ बाप की चूज़ की हुई चीज़ें पसंद ना करे, जो माँ बाप के चूज़ किए हुए रिश्तों को ठुकरा दें वो बच्चे अच्छे लगते हैं। तो अपने ऊपर लीजिए फिर अल्लाह के फैसले आपके मेरे हक में जो हैं। क्यों नहीं आप खुश? नहीं मिलना था बेटा, नहीं मिला, नहीं मिलनी थी बेटी, नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिलना था, नहीं मिला, सब मिला और छूट गया, नो प्रॉब्लम। ऐसे रिलैक्स हो जाइए, आपको गम ना करना चाहिए बल्कि हर हाल में राजी बा रजा रहना चाहिए। अगर अल्लाह के खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाइए जी। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। वो चाहे कि बैठो तो बैठ जाइए, वो आपको फकीर कर दे तो सब्र कीजिए, अगर आप सर्वतमंद यानी दौलतमंद कर दे तो शुक्र अदा कीजिए। किसी ने कहा कि दरवेशी क्या है, कहा ना मिले तो तमाना कीजिए, बिन मांगे मिल जाए तो जमाना कीजिए, ये है दरवेशी। ये अल्लाह को रब इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने का लाजमी तकाजा है। एक शायर ने कहा अपने लिए महज तदबीर ना कीजिए कि तदबीर पर भरोसा करने वाले हलाक हो जाते हैं, वो जो फैसला करें इसको मान लीजिए कि आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर फैसला करने वाले हैं। बच्चियों को नहीं कहती माएँ, पहले दौर में कहती थी, अब कहाँ कहेंगे, अब तो बच्चियाँ कहती हैं अबू मेरी वहाँ शादी कीजिएगा, अबू मैंने वहाँ शादी नहीं करनी, पहले दौर में सर झुकाती थी, कोई बात नहीं है माँ बाप अच्छा ही सोचते हैं। आज कर सकता है कोई ये सोच? अल्लाह अकबर कबीरा। तो क्या पता चला कि जो अल्लाह ने आपके मेरे मुकद्दर कर दी उस पर खुश रहिए। मुकद्दर क्या है? कदर से है, काफ दाल रा, पीछे भी इस पर बात की थी, तकदीर। आपका बर्तन ही इतना था। सूरत कमर 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कायनात को चलाने का अल्लाह का मंसूबा क्या, हमने हर चीज़ को एक अंदाजे के साथ पैदा किया। तकदीर का यही असूल इंसान पर भी लागू है, कहाँ पैदा हुआ, कौन माँ बाप होंगे, किस रंग में है, किस नस्ल से, सब पहले से मुतमईन है। तो अपने वीटिश होने पे भी राजी रहिए, काले हैं तो काले होने पे राजी रहे, गोरे ना बनिए, और अगर गोरे हैं तो उस पे भी राजी रह लीजिए। नाक मोटी है तो खुश, नाक पतली तो खुश, अगर होंठ गुलाब की पंखड़ियां नहीं भी हैं तो होंठ तो हैं, ना होते तो कैसे खाते पीते। इसी तरह सूरत मुद्दसर 38 में अल्लाह ने बता दिया हर इंसान अपने अमाल के बदले में गिरवी है, अमल करते जाइए वजूद को जहन्नम से बचाते जाइए। तो इंसान को जो कुछ और जितना मिलना सब तय है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को कोशिश और इंतखाब की आज़ादी दी है। तो आपको मुझे अपना इलाज खुद करना है। और सूरत हदीद की आयत 22-23 की तफसीर सुन लीजिएगा बाद में मौका मिल जाए, कि जिसमें अल्लाह ने बता दिया तुम्हें जो तकलीफ़ पहुंचती है तुम्हारे नफ्सों में या दुनिया में कोई भी चीज़ें, सब पहले से लिखा हुआ है और अल्लाह के लिए बहुत आसान है। जो चीज़ जाती रहे इस पर गम ना करो और ना उस चीज़ पर इतराओ जिसने तुम्हें बख्शी है। याद रखो कि अल्लाह ताला अकड़ने वालों और फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और तकदीर पर राजी रहने वालों को क्या मिलता है? सूरत माईदा की आयत 119 कि अल्लाह ताला कहेगा ये है वो दिन जिस इन सच्चों को इनका सच काम आएगा। बड़ी कामयाबी। तो तकदीर पर राजी रहने वालों का इनाम क्या है? कि दुनिया में भी राजी और आखिरत में भी अल्लाह उसको राजी कर देगा। حضرت عائشہ سے ایک روایت لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن جس نے لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپورٹ کر دیتا ہے اور خود اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور دعا جو اللہ کے نبی سے ہی ملی، ابو سعید خدری سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے یہ کہا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبی جن، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3017۔ تو پھر ہم سے کیا مطلوب ہے؟ راضی برضا رہنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اپنی پوری کوشش کرنا اور اللہ کے دیے پر مطمئن رہنا۔ یہ ہے آپ کے میرے دکھوں تکلیفوں بیماریوں سے بچنے کا نسخہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے دے۔ چند منٹ سوچئے، سوچئے کیا پڑا ہے۔ یقین کیجئے، ہزاروں ڈالر دے کر بھی علاج نہ ہو سکے ان مریضوں کا جن کا علاج اللہ کی کتاب سے ہو جاتا ہے، نبی کے فرامین سے ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نہ ڈاکٹر تھے نہ سائیکٹرسٹ تھے، لیکن حکیم تھے، اور یہ کتاب بھی حکیم ہے اور اللہ بھی حکیم ہے۔ تین حکمتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، اور اگر اس کو حکمتوں سے پڑھانے والا کوئی استاد مل جائے تو انشاءاللہ آپ کے غموں کا مداوع یہی ہے۔ تو ڈونٹ بی سیڈ، لا تحزن، کیونکہ ان اللہ ہمانا، بڑے سے بڑا غم دور ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔